Recording in progress.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. جی، تو سیرت الخلفاء راشدین کے اندر ہم پچھلی کلاس میں کیا بات کر رہے تھے؟ فرحان بھائی پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے، تو مطلب
اسلام لانے کا وقت ہے.
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا بات ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی اور کچھ اور بتانا چاہے اس کے علاوہ؟ ٹھیک، اس واقعے کے اندر ہم کہاں تک پہنچ گئے تھے؟ پورا واقعہ ہو گیا، پورا واقعہ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مطہرہ مطہرہ کے بارے میں ہم نے پڑھنا شروع کر دیا تھا، اور اس میں ہم نے پچھلی کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار بھی لگتے ہیں، لیکن بہت دور کے 9th جنریشن اب جا کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا شجرہ مل جاتا ہے. قریشی تھے، پکے قریشی، اور مکہ مکرمہ میں چند پڑھے لکھے لوگوں میں سے یہ بھی تھے، ٹھیک ہے؟ ورنہ لوگ جو ہے وہ پڑھے لکھے نہیں ہوا کرتے تھے، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی پڑھے لکھے نہیں تھے. پہلی دفعہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حرم میں نماز پڑھی تھی. ہاں، جب مسلمان ہو گئے تھے تو انہی کے سجیشن کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سارے صحابہ کو لے کر کے وہاں پہنچے حرم، اور وہاں پہ پہلی دفعہ جو ہے وہ کھلے عام سب کے سامنے نماز پڑھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اسلام لانے والوں میں سے ان کا نمبر کیا بنتا ہے، یہ کسی کو یاد ہے؟ جی چلے، 41. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کاؤنٹ کریں تو پھر دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو چونکہ بلانے والے تھے تو بتا دیں. ہاں، 40th، ٹھیک ہے؟ تو یہ 40ویں مسلمان تھے، صحیح ہے. اور 40 کا جو نمبر ہوتا ہے نا، یہ بڑا اہم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ 40 نمبر کا ہمارے اس دین کے اندر بڑی اہمیت ہے. بہرحال، تو آگے ہم چلتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں. تو ایک حدیث مبارکہ بڑی زبردست، ایکچولی حدیث تو نہیں ہے یہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی کا نقشہ نہ ایک جملے کے اندر سمیٹ کر کے رکھ دیا. وہ فرمایا کرتے تھے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، who was the sixth مسلم، ٹھیک ہے، اور فقہ کے اندر، علم کے اندر ان کا بہت بڑا مقام آتا ہے. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ ان اسلام عمر کان فتحاً، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا یہ فتح تھا، ٹھیک ہے؟ گویا کہ یہ بہت بڑی فتح مل گئی تھی مسلمانوں کو. ان ہجرتہ کانت نصرن، اور ان کا ہجرت کر لینا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، یہ اسلام کی ایک بہت بڑی مدد تھی، ٹھیک ہے؟ وہ ان عمارتہ کانت رحمتن، اور ان کی جو عمارت تھی، یعنی جب وہ امیر المومنین بنے، تو یہ اسلام کے لیے بہت بڑی رحمت تھی، ٹھیک ہے؟ تو گویا کہ پوری عمر رتان کی زندگی کو جو ہے انہوں نے ایک جملے کے اندر سمیٹ دیا، کان فتحن، کانت نصرن، وکانت رحمتن. اچھا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خواب نقل فرمایا، تو وہ بھی ہم آپ کو، بلکہ پچھلی کلاس میں بھی دو خواب جو ہے وہ ہم پڑھ چکے تھے. اچھا، ایک اور خواب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ ایک کنواں ہے، اور اس کنویں میں سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے ڈول کھینچ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ویل میں سے پانی نکال رہے ہیں. ڈول ہوتے تھے، بکٹ ٹائپ کی چیز جو کہ اندر ڈالتے تھے، اس کو جو ہے وہ رسی سے اوپر کھینچتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ڈول کھینچ رہے ہیں اور پھر زمین کے اندر اس پانی کو ڈال رہے ہیں. تو زمین ظاہر ہے پانی سے جو ہے وہ سیراب ہو رہی ہے، اس کے اندر ہریالی آ رہی ہے، ग्रीनरी उग रही है, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम करते रहे हत्ता के कर करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थक गए ख्वाब में, ठीक है, थक गए। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम से इस डोल को हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्ह ने ले लिया, ठीक है। और अबू बकर सिद्दीक रतानों ने जो पानी डालना शुरू किया ना, तो अबू बकर सिद्दीक रतान जो है वो पहले ही बहुत थके हुए थे, ठीक है ना, पहले से ही बहुत थके हुए थे, तो वो ज्यादा पानी नहीं डाल सके, ठीक है। फिर उनके बाद जो है ना, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम के ख्वाब में उस डोल को ले लिया और उन्होंने इतना डोल खींचा, यानी इतना पानी निकाला, इतना पानी निकाला और इतनी जमीन के ऊपर डाला कि पूरी जमीन जो है ना वो पानी से सैराब हो गई और जल थल हो गई और ग्रीन हो गई, ठीक है। तो इसकी ताबीर नबी अलैहिस्सलाम ने यूं बताई कि नबी अलैहिस्सलाम ने दीन का काम किया, दीन को फैलाया और पूरे जो सरजमीन अरब था उसके अंदर दीन फैल गया। फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आए, तो आप लोगों को उम्मीद है सबको याद ही होगा, पता ही है कि उनके जमाने में जो है ना वो दीन के फैलाव का काम बहुत थोड़ा सा हुआ था। उसी दीन को जो नबी अलैहिस्सलाम ने इस्टेब्लिश कर दिया था उसी की हिफाजत का काम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया, ठीक है, और उसको जो है वो पक्का कर दिया सरजमीन अरब के अंदर। और फिर उसके बाद थोड़ा सा जो है वो फारस की तरफ फौजें रवाना करी और थोड़ी सी जो है रोम की तरफ फौजें रवाना करी। लेकिन उमर रजान के जमाने में जब इस दीन जो है वो पक्का, सारे फितने भी खत्म हो गए, तो उसके बाद उमर रजान ने जो फैलाने का काम शुरू किया है, तो फिर बहुत दूर तक फारस का एक बहुत बड़ा एरिया उसमें इस्लाम फैल गया और रोम का भी जो है, रोमन एम्पायर का भी एक बहुत बड़ा एरिया, उसमें भी इस्लाम फैल गया, ठीक है। और ये इस्कंदरिया तक पहुंच गया, अलेक्जेंड्रिया, ये इजिप्ट का एक एक शहर है अलेक्जेंड्रिया, ठीक है, उसको अरबी में इस्कंदरिया कहते हैं। वहां तक जो है वो इस्लाम उमर रतान के जमाने में वेस्टवर्ड्स, ठीक है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, अभी तो याद नहीं रहा था तो प्रोजेक्टर का इंतजाम नहीं कर सके, तो वो उसका मैप भी नेक्स्ट क्लास के अंदर दिखाएंगे, ठीक है। तो वेस्टवर्ड्स वहां तक इस्कंदरिया तक, और ईस्टवर्ड जो है वो इराक के बहुत सारे शहरों तक जो है वो इस्लाम फैल चुका था, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो हमने एक बड़ा वाकया पढ़ना था वो है फतह बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस की फतह, ठीक है। तो उमर रतान के जमाने में, एज यू कैन इमेजिन, पीछे भी बात कर चुके हैं कि खूब जो है ना वो लड़ाइयां हुई और रोमन एम्पायर जो के पूरे शाम को गवर्न करती थी ना, उस जमाने का जो शाम था, असल में वो आजकल का जो कंट्री सीरिया है ना वो तो उसका छोटा सा हिस्सा है खाली, ठीक है। शाम जो था वो फारिस के वेस्ट में, फारिस के लेफ्ट साइड पर जितना एरिया था ना इजिप्ट तक, ये सारा का सारा शाम था, ठीक है। तो इसके अंदर इस वक्त जो सीरिया का कंट्री है वो भी इसका हिस्सा था, जो जॉर्डन का मुल्क है वो भी इसका हिस्सा था, फलस्तीन का जो मुल्क है वो भी शाम का हिस्सा था, और टर्की का जो सदर्न पार्ट है, ठीक है, जनूबी हिस्सा टर्की का, वो भी शाम ही का हिस्सा था, ठीक है। तो सारा का सारा शाम था, और इस पूरे शाम के ऊपर जो है वो बाइजेंटाइन एम्पायर, जो कि रोमन एम्पायर भी कहलाती है, बाइजेंटाइन के लफ्ज से जो है वो ज्यादा लोग मुत्तफिक नहीं है, लेकिन रोमन एम्पायर तो कह ही सकते हैं, सल्तनत रोम, और इसका जो है वो कुरान मजीद के अंदर भी जिक्र है, तो हम भी सल्तनत रोम इसको कहते हैं। तो उसके ऊपर फिर बहुत ज्यादा मुसलमानों ने अटैक्स करने शुरू किए, खालिद बिन वलीद ने खूब जो है वो लोगों को मार मार करके पीछे भगाया, हत्ता के रोमन जो है ना वो इस शाम के एरिए से रिट्रीट कर गए, ठीक है ना, छोड़ना शुरू हो गए, भागना शुरू हो गए यूरोप की तरफ, ठीक है। और टर्की का जो नॉर्दर्न एरिया था वो जो कि शाम का हिस्सा नहीं था, वो वहां चले गए, ग्रीस में चले गए, इटली की तरफ चले गए, वो वहां से रिसीड हो गए, सिर्फ एक बैतुल मुकद्दस बच गया उनके कब्जे के अंदर, ठीक है ना। तो बैतुल मुकद्दस में जो रोमन एम्पायर था वो तो मतलब जाहिर है उसी की फोर्सेस ही थी जो बैतुल मुकद्दस को अभी तक प्रोटेक्ट कर रही थी, और बैतुल मुकद्दस को छोड़ना जाहिर है वो नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके नजदीक बैतुल मुकद्दस क्या है, जैसे हमारे नजदीक मक्का मुकरमा है, ठीक है ना। हम मक्का मुकरमा को कहते, क्या कहते हैं कि अल्लाह का शहर है ये, राइट, ये अल्लाह का शहर है। उसी तरीके से उनके नजदीक, ईसाइयों के नजदीक बैतुल मुकद्दस ये अल्लाह का शहर है, ठीक है ना। उसको वो लोग क्या कहते हैं, ईलिया, ईलिया, एलिया मतलब ये अल्लाह का शहर, उनकी जुबान के अंदर इसका ये तर्जुमा बनता है। तो अब बैतुल मुकद्दस से कि अपनी फोर्सेस थी जो कि उसको प्रोटेक्ट कर रही थी, और वहां पर ना एक बहुत जो यानी एक क्रिश्चियन बिशप या उसको कार्डिनल कहते हैं, बहुत ऊंचा जो बड़ा ऊंची पोजीशन होती है उसके क्रिश्चियन पोप की, ठीक है। तो वो कार्डिनल था ना, वो वहां का सरदार था, वो वहां का जो है वो अमीर था, ठीक है। तो मुसलमानों के लश्कर के जो अमीर थे वो थे हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु। अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु ये अशरे मुबशरा सहाबा में इनका शुमार होता है, और ये इतने सीनियर सहाबा थे कि जब उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल होने लगा था तो उन्होंने अपने बाद जो खलीफा बनने वालों के नाम दिए थे ना कि इन 6 में से तुम अपना खलीफा चूज कर लेना, उनमें से एक हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह हजरतान भी थे, ठीक है। और अबू उबैदा बिन जर्राह जो हैं इनका बल्कि इससे भी ज्यादा पहले कि अबू बकर सिद्दीक रदान को जब लोग खलीफा बनाना चाहते थे तो उन्होंने भी कहा था अबू उबैदा को बना लो, यानी इतने सीनियर थे अबू उबैदा रजरतान है। मैं तो क्या 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 बनूंगा, तुम अबू उबैदा को बना लो, उमर को बना लो, ठीक है। तो इतने सीनियर थे, तो इनको नबी अलैहिस्सलाम ने अमीन हाजिल उम्मा का लकब दिया था कि इस उम्मत के ये अमीन है, अमानतदार हैं ये इस उम्मत के, ठीक है। तो उमर रताना उन्होंने हजरत अबू उबैदा रताना को अपने फौज का अमीर बनाया हुआ था, और वो जो है ना वो बैतुल मुकद्दस के महाज के ऊपर लड़ रहे थे। जब उन्होंने बैतुल मुकद्दस का मुहासरा किया, यानी बिल्कुल जब उसके जो है ना वो वॉल्स तक पहुंच गए, तो अंदर से जो ईसाई रहते थे ना अंदर, तो उन्होंने उनके जो ये आर्च बिशप था या कार्डिनल था, तो उसने जो है वो पैगाम भेजा कि भाई तुम हमसे लड़ाई मत करो, हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, हम ना तुम्हारे खलीफा से मिलना चाहते, ठीक है। तो उनको लेकर के आ जाओ, हम उनको देखेंगे फिर हम फैसला करेंगे कि हमें जो है ना वो लड़ना है कि नहीं लड़ना। हमारे पास कुछ निशानियां हैं उनकी, ठीक है, जो कि बैतुल मुकद्दस को आकर के फतह करेंगे ना हमसे, हमें उस हमारे पास उस शख्स की कुछ निशानियां मौजूद हैं हमारी किताबों के अंदर, तो अगर तो तुम्हारे खलीफा साहब उन निशानियों के ऊपर पूरे उतरे हैं ना, तो फिर तो हम बगैर लड़े हुए तुम्हें चाबियां दे देंगे शहर की, यानी जो मेन गेट होता है तो उसकी चाबी दे देंगे, तुम खोलना अंदर आ जाना, ठीक है ना। और अगर उसके अंदर निशानियां नहीं होंगी तो फिर हम तुमसे लड़ेंगे और तुम जो है ना वो हमारे शहर को हमसे छीन नहीं सकोगे, क्योंकि बैतुल मुकद्दस के जो डिफेंसेस थे ना वो इंतहाई स्ट्रॉन्ग डिफेंसेस थे, ऐसी ऐसी वॉल्स बनाई हुई थी उन्होंने कि कोई उसको जो है ना वो क्रॉस कर नहीं सकता। उनको बड़ा इसके ऊपर भरोसा था कि हम अपनी वॉल्स के जरिए से अपने आप को डिफेंड करते रहेंगे, मुसलमान अंदर घुस ही नहीं सकेंगे इल्ला ये कि निशानियां हों। तो ईसाई कल बल्कि परसों कुछ आप में से कुछ साथियों के साथ जो है ना वो काफी सारी यहूदियों के ऊपर भी बातें हो रही थी, ठीक है। तो यहूदियों की के अंदर और ईसाइयों के दरमियान आपने एक फर्क देखा कि लड़ाई तो ईसाइयों ने भी बहुत करी यहूदियों के मुसलमानों के खिलाफ, ठीक है ना, और बहुत जो है मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया और आज तक पहुंचाते आ रहे हैं, लेकिन ईसाइयों ने यहूदियों के मुकाबले में रिलेटिवली स्पीकिंग मुसलमानों से जो है ना वो कम जिद करी है, राइट, मुसलमानों के खिलाफ जो है वो कम जिद करी है, और बैतुल मुकद्दस की फतह जो है वो उसकी एक निशानी है, ठीक है ना। कि भाई जब साइंस हैं हमारे पास, जब हमारे पास जो है वो अलामात आ गई हैं कि हमारी आसमानी किताबों में लिखी हुई हैं, तो अब हमें लड़ने का क्या फायदा है, लेट्स सरेंडर, ठीक है ना, लेट्स गिव इन। लेकिन यहूदी जो है ना ये सारी निशानियां होने के बावजूद ये गिव इन नहीं करते, ये जिद के ऊपर लड़े अड़े हुए हैं, तो बस अड़े हुए हैं चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो बहरहाल तो अब जो है ना वो पैगाम भेजा गया हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को, तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है उन्होंने फैसला किया कि हाँ मैं आऊंगा। अब उस वक्त अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी मदीना तैयबा में थे, उन्होंने अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मशवरा किया, क्योंकि अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के एडवाइजर थे, मुशीर थे, ठीक है। एक दफा किसी ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, किताबों में लिखा हुआ हमने कहीं पढ़ा था, अब सही बात ही होगी इंशाल्लाह, किसी ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि जो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन का जो दौर था ना, तो वो तो बड़ा यानी इस्लाम की शान और शौकत का दौर था, और इस्लाम को बड़ा फायदा हुआ उसके अंदर, और जो है वो बड़ा है ना अच्छा मामला था। लेकिन जो आपका दौर है या जो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो आखिरी दौर था, तो उसके अंदर तो बड़े फितने ही फितने, और जो है वो लड़ाइयां हो रही हैं, और अब फितने हो रहे हैं, और ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ऐसा क्यों है? नहीं, तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे वो भी आखिर को मदीनतुल इल्म के दरवाजे थे, ठीक है, तो उन्होंने भी जो है ना उसको टिका के जवाब दिया। उन्होंने फरमाया कि असल में जब अबू बकर और उमर खलीफा थे ना, तो उनके वजीर जो है वो उस्मान और मैं थे। नहीं, उनके वजीर कौन थे? उस्मान और मैं। और जब उस्मान और मैं खलीफा बने, तो हमारे वजीर जो है ना तुम्हारे जैसे लोग हैं। तो इस वजह से जाना फितने तो नहीं थे, सही है, तो उन्होंने उसको टरहा दिया। बहरहाल, तो अली रतान से मशवरा किया, तो अली रतान फरमाया कि गर्मी भी बहुत है, आप सफर करेंगे तो अब आपको क्या जरूरत है वहां पे जाने की, मामला तो अल्लाह ताला के हाथ में है, तो आप रुक जाएं तो ज्यादा अच्छा है, हमें आपकी जरूरत यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, वहां पे जाएंगे सफर में खुदा ना खास्ता आप बीमार पड़ गए या कोई और तकलीफ हो गई या आपकी जान को खतरा हो गया, तो फिर मसला हो जाएगा ना, इतनी माशाल्लाह कामयाबियां आपके खिलाफत में मिल रही है, तो नुकसान हो जाएगा मुसलमानों का। लेकिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो मशवरा दिया उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने, फिर भी इरादा कर लिया, ठीक है, मशवरे लेना ये सुन्नत है, लेकिन अमीर के लिए कोई फर्ज वाजिब नहीं होता कि हर मशवरे के ऊपर अमल भी करें, ठीक है ना, तो अमल करना जो है ये अमीर के अख्तियार में होता है, वो फिर फाइनल जजमेंट उसके पास होती है, वो फैसला करे कि मशवरे पर अमल करना है कि नहीं करना है, लेकिन मशवरा फिर भी ले लेना चाहिए, ठीक है, छोटों से मशवरा कर लेना चाहिए। अच्छा, उमर रतान जो है जब चले तो उनके कपड़ों में 12 पैवंद लगे हुए थे, पैचेस, ठीक है ना, जब कपड़ा फट जाता था ना, तो उस जमाने में ऐसा नहीं होता था कि वो फट गया फेंको उसको दूसरा कपड़ा लेकर के आ जाओ, ठीक है, एक तो ये कि महंगा बहुत होता था, तो सिर्फ अमीर लोग जो है वो, बहुत अमीर लोग जो होते थे ना, वो नए कपड़े जो है वो अफोर्ड कर सकते थे, वरना जो है वो कपड़ा क्योंकि बहुत महंगा होता था और बहुत कम जो है वो अवेलेबल होता था मार्केट के अंदर, तो इस वजह से जो गरीब लोग होते थे वो फिर पैचेस लगा लगा करके ना सुराखों को भर लिया करते थे, ठीक है, तो उमर अतान जो है वो भी जाहिर है खलीफतुल मोमिनीन थे, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की तरह वो भी बहुत ही कम वजीफा लिया करते थे, तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो नए कपड़े पहनते रहे, तो 12 पैबंद उन्होंने लगाए हुए थे, और उनमें से एक पैबंद जो है वो चमड़े का लगा हुआ था, जो कि और भी ज्यादा यानी एक कम प्राइस वाली चीज होती है चमड़ा, जो कि बस किसी भी जानवर की खाल से आप चमड़ा हासिल कर लेते हैं। अच्छा, उनके पास एक ऊंटनी थी जो बड़ी कमजोर सी थी, उन्होंने अपने साथ एक गुलाम को लिया और चलने लगे। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया कि आप अच्छे कपड़े पहन लीजिए, हमारे पास मौजूद हैं, अब तो फतूहात इतनी हो चुकी हैं, फारस से भी इतना माल आ रहा है, रोम से भी इतना माल आ रहा है, हमारे पास मौजूद हैं, आप हमसे ले लीजिए ना कपड़े। तो उस वक्त, अच्छा, इस वक्त तो अल्लाह ताला ने इस्लाम को फतुहात अता फरमा दी है, और इन फतुहात की वजह से बैतुल माल के अंदर बहुत कुछ है, गुर्बत का जमाना तो अब है नहीं, आप इस्लाम की नुमाइंदगी करेंगे तो बेहतर है कि आप अच्छा लिबास पहन करके जाएं, काफिरों के दिल पर रोब पड़ेगा कि मुसलमानों को भी अल्लाह ताला ने दुनिया की ये सब नेमतें अता फरमा दी हैं, और जो ये तासुर है कि मुसलमान कमजोर हैं और गरीब हैं, तो ये तासुर, ये इंप्रेशन भी जो है ना उनके ऊपर खत्म होगा। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ना शुरू में तो इस एडवाइस को मान लिया, ठीक है, बात अच्छी लग रही थी कि अभी काफिरों पे रो पड़ेगा और मुसलमानों की शान शौकत का इजहार होगा, तो उन्होंने वो कपड़े पहन लिए। फिर उनके लिए ना एक उमदा किस्म का अरबी घोड़ा मंगवाया गया, ठीक है, अरेबियन हॉर्सेस, तो वो उस घोड़े के ऊपर बैठे और थोड़ी देर के बाद उतर गए घोड़े पर से, ठीक है, तो गुलाम ने पूछा कि अमीरुल मोमिनीन आप क्यों उतर गए, तो उन्होंने फरमाया कि मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है कि मुझे ना अपनी ऊँटनी के ऊपर ही सफर करना चाहिए और मुझे अपने ही कपड़े पहन करके जाने चाहिए, ठीक है, तो इस वजह से ना मैं ये कपड़े भी नहीं पहनूंगा और मैं इस घोड़े के ऊपर भी नहीं सवार हूंगा, तो उन्होंने अपने जाती कपड़े पहन लिए और ऊँटनी के ऊपर ही सफर किया, और अपने गुलाम के साथ ही इस सफर को तय किया, और उसके साथ ये डिसाइड किया कि 1 मील तक जो है वो उमर रतान ऊँटनी पर बैठेंगे और गुलाम ऊँटनी कि जो वो रस्सी होती है महार जिसको कहते हैं उसको पकड़ करके चलेगा, और जब 1 मील पूरा हो जाएगा तो नेक्स्ट माइल जो है उसके अंदर जो गुलाम है वो ऊंटनी पर बैठेगा और उमर अतान जो है उसके महार पकड़ करके चलेंगे। तो गुलाम ने कहा कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं, मैं गुलाम हूं, तो मैं जो हूं रस्सी पकड़ करके चलूंगा, आप बैठे रहे सारा सारा वक्त, ठीक है। उमर अतान ने जवाब दिया कि नहीं, तुम भी इंसान हो, तुम भी थक जाते हो, जिस तरह मैं थक जाता हूँ तुम भी थक जाते हो, तो तुम बैठोगे एक मील के लिए और एक मील के लिए मैं बैठ जाऊंगा, इस तरीके से हम पूरा सफर तय करेंगे।
अगर 1 मिनट के साथ चलेगा
1 मील किस तरह पता चलेगा? मीटर सुन लोगों के पास नहीं होते थे, लेकिन इतना तो अंदाजा उन लोगों को हो चुका होगा सारी जिंदगी, ये तो कोई नई बात नहीं थी, ये तो हमेशा ही वो लोग मीलों का हिसाब करते थे ना, तो उसका कोई ना कोई उनके पास होगा मेजरमेंट, ठीक है। और वैसे भी कोई 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं होता, तो बस अंदाजा ही होता है 1 मील का। अच्छा, तो गुलाम बिलाखिर उसने तो हुक्म मानना था, लाजमी था उसके ऊपर, अल अमरु फौकल अदब, है ना, अमर यानी हुक्म जो होता है ना वो अदब से भी ज्यादा अहम चीज होती है, तो उसको हुक्म मानना पड़ा। अच्छा, जब अल्लाह की शान देखें कि जब सफर कटता रहा, जब आखिरी माइल था ना, ठीक है, जब बिल्कुल 1 मील जो है बैतुल मुकद्दस से दूर रह गया, तो वो माइल जो था वो गुलाम के सवारी का माइल था और उमर अतान के रस्सी को पकड़ने वाला माइल था, ठीक है ना, आखिरी माइल में। अब ये पहले से कोई कैलकुलेट करके भी थोड़ी चले थे कि इतने माइल्स होंगे, तो आखिरी माइल जो है ना उसके अंदर वो वैसा माइल होना चाहिए जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, ये तो उन्होंने कैलकुलेशन करी भी नहीं थी और ना इसकी जरूरत थी उनको कैलकुलेशन करने की। तो आखिरी माइल में उमर अतान जो है वो पैदल चल रहे हैं और गुलाम जो है ना वो ऊंट के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। अच्छा, वहां पे जो करीब मुस्लिम आर्मी थी जो कैंप्स थे, तो जाहिर है ये लोग पहले कैंप्स में गए थे, मुस्लिम आर्मी के कैंप्स में, तो सारे आर्मी के लोग भी साथ आ रहे थे, ठीक है ना, वो भी साथ चल रहे थे और ये लोग भी साथ आगे आगे चल रहे थे, ठीक है। अब जो है ना जब वो जो बिशप था, आर्च बिशप या कार्डिनल जो भी था, वो शहर से बाहर निकला, उसने उमर अतान को देखा और उसने कहा जी ये तो वही है, ये तो वही है जिसका जिक्र जो है वो हमारी किताबों के अंदर सारे के सारे साइंस के साथ मौजूद है। तो उसने जो है वो उमर अतान को लिया और अपने साथ साथ जो है ना वो अंदर, ठीक है। अब ये जो वाकया, अच्छा इसको जो है ना अंकल्स कुछ समझ गए लगता है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक सवाल पूछा है कि वॉज स्लेवरी अलाउड इन इस्लाम? स्लेवरी वॉज नहीं, स्लेवरी इज अलाउड इन इस्लाम, ठीक है, स्लेवरी इज अलाउड इन इस्लाम, आज भी इज अलाउड इन इस्लाम, ऑल्दो देर आर नो स्लेव्स, तो स्लेव्स है नहीं लेकिन स्लेवरी अलाउड है, ठीक है। लेकिन स्लेवरी आपने जो सवाल किया ना, आप हैं कौन? तो आपका नाम तो है अली, लेकिन मैं जानता नहीं हूँ आपको, तो इस वजह से आपके बैकग्राउंड का अगर इल्म होता तो आपको फिर अच्छी से ज्यादा अच्छे से हम समझा सकते। फिलहाल इतना सुन लीजिए कि जो इस्लाम के अंदर स्लेवरी का कॉन्सेप्ट है ना और जो अमेरिका के अंदर स्लेवरी का कॉन्सेप्ट है या यूरोप के अंदर, अफ्रीका के अंदर जो स्लेवरी का कॉन्सेप्ट है, दीज आर एब्सोल्युटली डिफरेंट, ठीक है ना, वो बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है इन दोनों चीजों के अंदर। और इसकी जो है वो तफसील ऐसी है कि जिसको कि अगर आप स्टडी करेंगे समझेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्लेवरी तो माशाल्लाह यानी ये तो अमीरी है गोया के, ठीक है। इसलिए कि मुसलमानों में जो स्लेव्स होते थे ना, तो वो ऐसे ऐसी जगहों पे पहुंचे कि जहां पर के इवन जो ओरिजिनल अरब्स थे ना वो भी नहीं पहुंच सके, ठीक है। और वो बड़े बड़े उस्ताद बने, बड़े बड़े उलमा बने, ठीक है ना, और उनके सामने बैठ करके खलीफा वक्त साहब भी जो है वो इल्म हासिल कर रहे होते थे, ठीक है ना, स्लेव्स और स्लेव्स की औलादें। हत्ता के लेटर ऑन कुछ सालों के बाद जो है वो ऐसा भी वक्त आया मुसलमानों के दरमियान कि स्लेव्स जो है वो बाकायदा बादशाह बन गए, ठीक है ना, वो बाकायदा जो है वो यानी रूलर्स बन गए स्लेव्स, ठीक है ना। तो ममलूक एक बाकायदा रूलिंग डायनेस्टी है इस्लाम मुसलमानों के अंदर, ममलूक उनको कहते हैं, उनको ममलूक इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो ममलूक थे, ममलूक का मतलब होता है गुलाम, खानदाने गुलामा भी उसको कहा जाता है इंडिया के अंदर, ठीक है ना। तो उनके जो बाप दादा थे ना वो गुलाम हुआ करते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको मुसलमानों के ऊपर हुक्मरानी अता फरमाई, खानदान गुलामा और द ममलूक्स जो है वो उनको कहा जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर काफी तफसील है कि स्लेवरी क्यों अलाउड थी या क्यों स्लेवरी को मुसलमानों यानी नबी अलैहिस्सलाम ने आकर के स्लेवरी को एकदम से खत्म क्यों नहीं कर दिया? इसकी रीजंस हैं जो कि इंशाल्लाह आपको पढ़ने के ऊपर समझ में आ जाएंगी। सही है, तभी तो हम उमर फारूक रहता के इस वाकये का जिक्र कर रहे हैं। तो ये जो वाकया है ना, ये तो आपने शायद पहले भी सुना होगा, ठीक है? पहले सुना था किसी ने कि जब बैतुल मुकद्दस को फतह करने के लिए उमर रतान पहुंचे तो वो ऊँट के ऊपर सवार नहीं थे और वो गुलाम सवार था, और उसने जो है वो, लेकिन आज जो है ना वो अल्लाह ताला ने दिल में ये आइडिया डाला। 20 मिनट ही रह गए, असल में क्लास भी अभी है, अभी टाइम थोड़ा सा एक्चुअली है, तो मेरे पास 45 मिनट्स। तो हमने अंकल्स को ना कुछ अर्सा पहले एक लेक्चर सुनवाया था, बल्कि लेक्चर का एक छोटा सा पार्ट सुनवाया था, ठीक है? वो पार्ट हम चाह रहे थे कि हम आपको भी सुनाएं, क्योंकि मौका ही ऐसा मिल गया है। सही है, हजरत उमर रतान की फतह बैतुल मुकद्दस का वाकया, ठीक है? वो वाकया जो वो जो जो लेक्चर का पार्ट है वो है किसका, ये भी मैं आपको बता दूं पहले, कि वो है एक नॉन मुस्लिम, ठीक है, अमेरिकन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का लेक्चर है वो, ठीक है? आप लोग सुन चुके हैं जी, मुझे पता है तुम चुके। तो नॉन मुस्लिम अमेरिकन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का लेक्चर है, ठीक है? उसका नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, उसकी वजह यह है कि आई डोंट वांट यू टू गो अराउंड एंड स्टार्ट लिसनिंग टू अदर लेक्चर्स बाय हिम, ठीक है ना? क्योंकि वो एक नॉन मुस्लिम है और उसकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है बहुत सारी चीजों में जो कि सही नहीं है, ठीक है ना? बहुत सारी चीजों में उल्टी सीधी भी बोल देता है, उसकी अपनी रिसर्च है भाई। मुसलमान तो वो है नहीं, ईमान तो उसका है नहीं कुरान मजीद के ऊपर, नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर उसका तो ईमान है नहीं, तो वो तो एक नॉन मुस्लिम पर्सपेक्टिव से चीजों को देखता है ना, ठीक है? तो वो कुछ चीजें जो है वो सही भी हो जाती हैं जो कि कुरान और हदीस के मुताबिक भी हो जाती हैं, और बहुत सारी चीजें जो है वो गलत भी हो रही होती हैं। तो उसके बातों में से सही और गलत का फर्क मालूम करना, इसके लिए अच्छी खासी नॉलेज की जरूरत है, ठीक है ना? जो कि ऑफकोर्स बच्चों के पास उतनी नॉलेज नहीं हो सकती है अभी फिलहाल, ठीक है? तो इस वजह से आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि जी आप जाकर के जो है ना इस किस्म के नॉन मुस्लिम्स के जो है वो लेक्चर सुनना शुरू कर दें कि भाई बड़ा मजे मजे की बातें कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो उनकी सारी बातें अच्छी होती नहीं। ये एक बात जो थी वो बड़ी जबरदस्त और बड़ी अच्छी उसने करी थी, तो वो हम आपको सुनाएंगे भी, लेकिन साथ साथ उसके अंदर भी कॉमेंट्री चलती रहेगी हमारी, ऐसे नहीं छोड़ेंगे आपको खाली उसको सुनने के लिए, ठीक है? तो अब जो है वो उसको सुनिए, वो जो है ना वो उमर रतान के इस पहुंचने के वाकये को बयान करता है। अंग्रेजी में है तो
बिल्कुल
जिसको पूरा समझ में नहीं आ रहा होगा उसके लिए भी, और इवन कुछ ऐसे पॉइंट जो के एक्सप्लेनेशन जिनमें चाहिए उसके लिए भी, हम बीच बीच में इसको रोक करके, आप मुझे अगर देने, मुझे जब रोकना होगा तो मैं
sent for and then return. So they come up with a scheme. The scheme is
नहीं, थोड़ा
it's,
सा आगे से कहा था करने के लिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कह रहे हैं मुसलमानों ने झूठ बोला, ठीक है? जो कार्डिनल था ना रोम का, तो उससे जो है ना वो मुसलमानों ने झूठ बोला। अब हम इससे एग्री नहीं करते, सहाबा और झूठ ये तो मुमकिन ही नहीं है, ठीक है ना? लेकिन ये एक नॉन मुस्लिम है, इसकी अपनी एक किताब में पढ़ लिया होगा कि मुसलमानों ने कार्डिनल के साथ जो है झूठ बोला, कि जब उसने कहा ना कि मुझे खलीफा से मिलना है तो उन्होंने क्या किया कि खालिद बिन वलीद को जो है ना वो खलीफा बना करके पेश कर दिया, ठीक है ना? अब अल्लाह आलम के ये झूठ झूठ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अलबत्ता मुमकिन है कि अगर ये वाकया ऐसा हुआ भी तो हम उसकी तावील करेंगे, हम उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, वो ऐसे करेंगे कि भाई खालिद बिन वलीद अतान जो हैं वो वहां पर खलीफा के खलीफा थे, ठीक है ना? खलीफा के रिप्रेजेंटेटिव थे, तो उन्होंने कहा कि भाई खलीफा का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो यहाँ पे खलीफा का ही तो रोल प्ले कर रहा है, तो चलो खालिद बिन वलीद अतान की मुलाकात करवा देते हैं उसके कार्डिनल से, ठीक है? ये तो मुमकिन है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि सहाबी और झूठ, एब्सोल्यूटली इम्पॉसिबल, ठीक है? बहरहाल तो ये चीजें होती हैं इन लोगों की बातों में ना, तो इस वजह से अब आपको अगर इस चीज का इल्म नहीं होगा, तावील देना आपको नहीं आता होगा, एक्सप्लेन अवे करना नहीं आता होगा, तो आपके दिल में शैतान डालेगा, अच्छा सहाबा भी झूठ बोलते हैं तो मैं कौन सा गलत काम करता हूं अगर मैंने झूठ बोल दिया तो, है? इस तरह की जो चीजें हो जाती हैं। बहरहाल सुनो,
Khalid is Umar ibn Khattab's first cousin. He actually looks like him. So they pretend Khalid ibn Walid is the Khalid. Meet with Sophronius, and while they're talking, Somebody had actually met Umar ibn al-Khattab, I'm sorry, had met Khalid ibn al-Walid and knew that was Khalid. So he tells Sophronius, you're being duped, it's not really the Khalid. It's some other dude, it's that general that's been tearing us up. Sophronius is outraged. He goes, you lied to me. And he calls off the negotiations for the surrender. So now their arms are stuck getting the Khalid. Sophronius comes out of the gates weeks later
Sophronius,
to
yani the
meet the
cardinal
Caliph
town
as
guy.
he sees the Caliph's army arrive. And as he's approaching, he sees a man leading a camel the front of the army. So, for the record, the rich Arabs, the Arabs who were good soldiers, didn't usually ride camels, they usually rode horses, Arabians. For those of you who don't know, Arabians are fast and agile and they have crazy personality.
उसकी आवाज हमें तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन इस इन लोगों को शायद अच्छी नहीं आ रही। थोड़ा सा अभी यहाँ पे इसका वॉल्यूम कम करना पड़ेगा। खैर आप स्टार्ट करें, वॉल्यूम थोड़ा कम करें। अच्छा उधर से नहीं, इधर से करना होगा। खैर आप स्टार्ट करें।
And so they're perfect for warfare. Camels are a little bit clumsy and slow. They serve a purpose in warfare, but you're better off on an Arabian. In case, the Arab army is being led by a man leading a camel with a man on the camel. So Sophronius, he's got a giant red hat, because he's also a cardinal, right? Got gold tassels, actual gold, hanging from his hat. He's covered in gold jewelry. He's wearing red robes. He's covered in perfume. He's on a lectica. The lectica was the couch that the Romans would ride, and then they'd have like four or eight men, depending on how big it is, carrying it. And then he has two men, one on each side, fanning him. Of course, right? That's what Jesus would want from his bishops.
ये जो बंदा है ना, ये एक्चुअली इसके शायद पेरेंट्स तो क्रिश्चियन होंगे, लेकिन खुद जो है ना ये सेकुलर किस्म का बंदा है। सेकुलर लोग होते हैं जो कि जिनके बिलीफ नहीं होता किसी पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर। दे बिलीव हाँ भी सारे रिलीजन अच्छे हैं और बड़ी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन आई डोंट सब्सक्राइब टू वन पर्टिकुलर रिलीजन। तो ये हर रिलीजन के बारे में ना अच्छा बुरा सब कुछ करते रहते हैं, इस तरह की बात
सोचते
वो ऐसे सोचते ही नहीं।
हैं जैसे एक सोचते हैं कि वो मतलब ऐसे सोचते हैं कि
हाँ वो सेक्युलर कहने का मतलब ये होता है कि वो एथियस्ट तो नहीं है नेसेसरली कि वो ये कहते हैं कि खुदा है ही नहीं, ऐसा तो नहीं कहते, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि कोई रिलीजन प्रॉपर नहीं है। ठीक है ना, एग्नोस्टिक भी ऐसे लोगों को आप कह सकते हैं और सेक्युलर भी ऐसे लोगों को आप कह सकते हैं। बहरहाल तो ये कह रहे हैं कि जब जो जो कार्डिनल था ना, वो जब बैतुल मुकद्दस के दीवारों से बाहर निकला ना, गेट से बाहर निकला, तो उसने देखा कि एक मुस्लिम आर्मी जो है वो आ रही है, लेकिन उसके बिल्कुल आगे जो है ना वो एक कैमल के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है और एक बंदा जो है वो कैमल की रस्सी को पकड़ा हुआ आगे आ रहा है। तो अब ये जो था, ये तो आखिर को आर्च बिशप था वहां का बैतुल मुकद्दस का, तो इसने तो है ना एक ऊंची सी हैट पहनी हुई थी और जो है वो गोल्ड जो है वो इसने असली गोल्ड की जो है वो पहनी हुई थी चीजें, ठीक है ना, और ये एक पालकी में सवार था। ठीक है, पालकी हमारे यहाँ कहते हैं जिसको चार बंदे जो है ना, जैसे आप आपने जनाजे में देखा होगा ना, मुर्दा को हमारे यहाँ ऐसे उठाते हैं, तो वो मुर्दा तो लेटा हुआ होता है, लेकिन पुराने जमाने में लोग बैठे हुए भी होते थे, तो उनके भी जो है वो चार डंडे लगे हुए होते थे, वो बैठ जाते थे अपने उस चीज के ऊपर और उसको जो है वो उनके गुलाम उठा लिया करते थे। तो चार गुलामों ने उनको उठाया हुआ था।
हजरत शेख उल हिंद साहब रहमतुल्लाह अलैहि भी ईद की नमाज में उस पे जाते थे।
ईद के बाद में वो पालकी, हाँ इसलिए कि फिर वो वही राइज हो गया था, लेकिन इसकी पालकी जो तो बड़ी शाहाना किस्म की पालकी थी। ठीक है, तो उसको चार गुलामों ने उठाया हुआ था और बाकी जो है ना दो गुलाम उसको हवा झल रहे थे साइड में। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इतना सोने के अंदर और इतना शाहाना किस्म का जो वो जा रहा था, तो जीसस ने जैसे कि इन लोगों को यही तालीम दी थी कि इसी तरीके से तो तुम लोग रहा करो। ठीक है, हालांकि ऐसा तो नहीं था ऑफकोर्स। बहरहाल तंज भी कर रहा है साथ साथ ना, क्रिश्चियनिटी के ऊपर भी तंज कर रहा है और दूसरी चीजों पर भी कर रहा है। आगे
Exactly right. And he's coming out on this lectica being fat. He comes up to the guy on the camel and he says, where is the caliph? The guy on the camel does like this. He nods with his head at the guy leading the camel. So,
कैमल के पास पहुंच के ना उसने पूछा भाई खलीफा किधर है, तो जो ऊपर बैठा हुआ था ना उसने यूं करके ऐसे ना अपने मुंह से इशारा किया ये खलीफा है ये नीचे, तो वो समझा कि वो कह रहे इसे पूछो कि खलीफा किधर है। तो
just turns to the guy leading the camel, goes, where's the caliph? The guy leading the camel says, I'm the caliph. Sophronius goes, dude, you're dressed in rags.
ये ना शिकागो वगैरह के जो, और शिकागो और टेक्सिस वगैरह के जो अमेरिकन होते हैं ना, तो वो जो है वो डूड बहुत कहते हैं डूड। हमारे एक दोस्त थे मंसूर भाई, तो वो भी ना वो डूड डूड, हम उनको कहते हैं क्या आपने दूध दूध लगाई हुई है, हर बंदे को दूध दूध। तो वो डूड डूड करते रहते थे बहुत, डूड यू आर यू नो यू आर यू आर ड्रेस्ड इन रैग्स, तुम तो फटे पुराने कपड़ों के अंदर जो है ना वो मलबूस हो। सही है,
pants were or mended multiple times, his shirt was mended multiple times, and he goes, no, I'm the caliph. And Sophronius goes, you've just conquered Iraq and Syria and all of Palestine minus Jerusalem, how is it you're so poor? And the caliph goes, well, why would I collect wealth? We're not doing this war because I'm trying to plunder anything. I'm a humble man with humble needs. I just need good meal. And Sophronius goes, what?
अभी तुम्हारे ये तो फटे पुराने कपड़े तुम क्यों पहने हो, तुमने जो है वो अभी इतने सारे जो है वो इराक को फतह कर लिया है, तुमने पूरे के पूरे शाम को फतह कर लिया है, सिर्फ एक बैतुल मुकद्दस रह गया है, वो भी तुम अभी फतह करने के लिए आ गए हो, तो तुम इतने गरीब क्यों हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई मैं हम इसलिए कोई थोड़ी लड़ाई लड़ते हैं लोगों से कि हम पैसे इकट्ठे करते रहे और हम अमीर बन जाए, इस मकसद से तो हम लड़ाई कर ही नहीं रहे, ठीक है, मुझे तो बस एक अच्छा सा खाना चाहिए, मेरा गुजारा हो जाता है जिसके अंदर, बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, ठीक है।
You're riding the camel. And Omar goes, that's my servant on the camel. And we take turns so that neither one of us gets exhausted. At this point, Sophronius is like, oh, what? Who just conquered us? These Marxists? So Sophronius gets off the lectica because he's shamed off of the thing. And he said,
उसने कहा ना कि ये ऊपर कौन बैठा हुआ है, ये मेरा गुलाम है, तुम ऊपर भी नहीं बैठे हो, कि भाई ये भी तो थक जाता है ना, इस वजह से हम टर्न्स लेकर के आ रहे थे, ठीक है। तो अब उसको इतनी शर्म आई उस फ्रेनियस को, कि इतनी शर्म आई कि वो खुद भी ना अपने उस इलेक्ट्रिका से जो है वो नीचे उतर आया, अपने पालकी से नीचे उतर आया, ठीक है।
okay, I want to talk to you about our surrendering the city to you. And the caliph says, I have an idea. Let's walk to the city, and I'll tell you what I was thinking the terms would be. So we'll start there. Zvonitz goes, yes, of course. And as they're walking, Omar ibn al-Khattab says, why don't we do this? All Roman politicians leave Jerusalem. Just go. You're a politician. If you're a top bureaucrat, an officer, you can take anything you can carry. You can take gold, as long as you can carry it. Sophronius goes, okay. I mean, that's reasonable. Actually, more than reasonable. I just assumed you'd enslave them and take their gold. I don't see how anybody would be mad about that. And what else? And the caliph goes, oh, no, I was thinking that's it. We don't do anything else.
So, जब उसने लाजवाब हो गया कि भाई ये किस किस्म के लोग हैं ना, पैसे इकट्ठा करते हैं और ये अपने गुलाम को जो है वो अपने ज्यादा इज्जत देते हैं, अब उसने कहा मैं और क्या बात करूं, चलो लेट्स गेट टू द पॉइंट, ठीक है ना, कि भाई हमने सरेंडर करना है और आपको हमें अपने शहर की चाबियां हवाले करनी है, तो अब जो है ना वो हमारी टर्म्स ऑफ सरेंडर क्या होंगे ना, कि किस बुनियाद पर आप हमारे साथ क्या करेंगे, हम आपके साथ कैसे बिहेव करेंगे, तो हम टर्म्स ऑफ सरेंडर के ऊपर आप बात कर लेते हैं, ठीक है। तो खलीफा उमर ने फरमाएंगे हाँ ठीक है, तो चलो हम अब शहर के अंदर चलते हैं, और चलते चलते जो है वो हम टर्म्स ऑफ सरेंडर यानी उन बातों के ऊपर एग्री कर लेते हैं कि भाई क्या क्या हमने करना है, ठीक है। तो उसने कहा कि बिल्कुल सही है ना, तो चलो अंदर चलते हैं। तो उमर रतन ने उससे कहा कि भाई हमारी जो है ना वो एक शर्त ये है कि तुम्हारे जो पॉलिटिशियंस है ना, तुम्हारे जो लीडर्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, वो लोग जो है ना सारे के सारे बस चले जाएं, ठीक है, बैतुल मुकद्दस छोड़ करके चले जाएं, और अपने साथ अपना जो भी माल असबाब सोना चांदी वगैरह है ना वो सब साथ ले जाएं, जो वो लेके जाना चाहते हैं, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, ठीक है, आप जो है वो उनको मार वार करके उनसे कुछ छीनना वीना नहीं चाहते, हम ये सब कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो ठीक है वो सब चले जाएंगे, और बताओ और क्या टर्म्स हैं आपकी, ठीक है। तो उम्र बताएंगे बस इतना ही है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। उसने कहा क्या मतलब और कुछ नहीं चाहिए तुम्हें, ठीक है, अब आगे सुनिए, बड़े मजे मजे की बातें करते हैं।
So Funnius goes, wait a minute, I am really confused. When us Romans capture a city, we enslave a segment, plunder the city, probably a little bit too much raping too, might even burn some of it just for.
कहता है कि जब हम रोमन्स किसी सिटी के ऊपर कब्जा करते हैं ना, तो हम जो है ना वो तो बहुत सारे लोगों को कत्ल ही कर देते हैं एकदम, ठीक है, ऐसे ही बस मार देते हैं, और जो है वो औरतों की भी इज्जत खराब करते हैं, और जो है ना वो हम बहुत लूट खसूट करते हैं उस शहर के अंदर, है ना। और उसके बाद कहते हैं कि फिर ना हम बहुत सारी चीजों को आग भी लगा देते हैं, भाई ऐसे ही फन के लिए, है ना, हंसी मजाक के लिए हम बहुत सारी चीजों को आग भी लगा देते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर
And the
द
giggles,
हिल।
then we declare it to be ours. What about that? Ibn al-Khattab goes, no, we're not going to do any of that. No plundering, no raping, no enslaving. We don't do that stuff. And Sophronius goes, oh, but you're going to like seize property in the city. And the caliph goes, no, we're not going to take anybody's property. We're going to leave the city exactly like it is. The only thing I want to do is eject the Roman politicians. Whatever they can carry. Sophronius goes, there's nothing to negotiate. Yeah, we surrender the city this instant. I don't understand, actually. Walk into the city. Khalid is one of the men following. Amr ibn al-As. All these guys, they're on foot. If they've got their horses with them, they're leading their horses by the reins, right? Because the leadership is on foot. There's no way they're going to ride in. They're walking. This is a holy city to them because Jesus is holy to them, because the Jews were holy to them. And so they see this as a holy city. Sophronius tell me about your religion as they're walking through the streets. So
ठीक है, तो उमर रतानानों ने सिर्फ एक शर्त रखी कि तुम्हारे पॉलिटिशियंस जो है ना वो यहां से चले जाएं, क्योंकि पॉलिटिशियंस जो होते हैं ना, जो हुकूमत के लोग होते हैं, वो फिर हुकूमत करने के इतने आदी हो जाते हैं कि अब वो किसी दूसरी हुकूमत को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर उनको भी छोड़ दिया जाता है ना, तो फिर वो कुछ ना कुछ मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते रहते और कोई ना कोई जो है ना वो साजिशें करते रहते। तो उमर रतानों ने सिर्फ जो है वो पॉलिटिशियंस को निकलने के लिए कह दिया, ठीक है। तो और क्या कहा था इसमें, अभी इस वाले इसमें कि और कोई टर्म नहीं है, बस ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमने कर ली, सरेंडर हो गया और हमारे पास कुछ चीजें ही नहीं। अब उसने कहा कि हम अब ऐसा करो, तुम चलते, अब ये चलते हुए दोनों अंदर जा रहे हैं, शहर के अंदर जा रहे हैं ना, तो उसने कहा अच्छा ऐसा करो, तुम हमें ना अपने रिलीजन के बारे में तो कुछ बताओ, ठीक है, अपने दीन के बारे में। तो
Umar
उसने
ibn al-Khattab starts telling him about Islam. Sophronius goes, it just sounds like a variation of Christianity. I feel like our religions are shockingly similar. And Umar ibn al-Khattab goes, yeah, because they are. I mean, we thought we were doing Judaism 3.0. It never.
अच्छा एक और चीज जो रह गई थी वो क्या, कि जब ये लोग अंदर वॉक इन कर रहे थे, तो बाकी जितने भी जर्नैल थे मुसलमानों के, खालिद बिन वलीद रतान हैं, अमर इबन आस रतान हैं, अबू उबैदा बिन जर्रा रतान हैं, ये सारे के सारे पीछे पीछे जो है ना वो पैदल चल रहे थे। अगर घोड़े थे भी इन लोगों के पास, तो घोड़ों को बस उनके लगाम में पकड़ करके अंदर जा रहे थे। तो इसमें इसने जो है ना वो पूछा कि भाई अपने रिलीजन के बारे में मुझे कुछ बताओ। तो नबी तो उमर रज़ी अल्लाह उन्होंने जब बताना शुरू किया तो कहते हैं कि ये तो बहुत सिमिलर है हमारे रिलीजन से, ईसाइत और इस्लाम के अंदर तो हमें कोई फर्क ही नजर नहीं आता। ठीक है, क्योंकि बुनियाद तो दोनों की एक ही है। ईसाइत तो आपको पता है ना कि ये कोई अलग दीन तो है ही नहीं, ये तो इन लोगों ने बना लिया है ईसाइत। ठीक है ना, यहूदियत तो इन्होंने बना लिया है, वरना असल में क्या है सारा का सारा इस्लाम। ठीक है, इन दीन अंदल्लाहिल इस्लाम, असल में तो आदम अलैहिस्सलाम भी इस्लाम ही लेकर के आए थे, मूसा अलैहिस्सलाम भी इस्लाम ही लेकर आए थे, ईसा अलैहिस्सलाम भी इस्लाम ही लेकर आए थे। ठीक है ना, अब उसके अंदर जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहना, तो ये तो इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया। तो बुनियाद तो सारे रिलीजन्स की एक ही है। ठीक है, तो उसने कहा कि भाई ये तो बड़ा सिमिलर लग रहा है। ठीक है, तो ये अपने खास जो है ना वो मखसूस अमरीकी अंदाज में कहता है कि हाँ, तो जैसे कि उमर रतानों ने ये कहा कि हाँ, हम तो बस इसी वजह से तो परेशान है कि हाँ, तुम लोग हमारी इतनी मुखालफत क्यों करते हो। हम तो अपने हिसाब से जुडेज्म वर्जन 3.0 लेकर के आए हैं खाली। है क्या मतलब जुडेज्म वर्जन 3.0 का मतलब क्या है, कोई बताएगा? सॉफ्टवेयर की रिलीजेज होती हैं, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3। ठीक है जी सर,
तजदीद
तजदीद।
ये बग्स आ गए हैं जो खराबी आ गई है इस वर्जन के अंदर, उसको अपडेट पैच
सही है
करना।
माशाल्लाह। ठीक है, तजदीद यानी खराबियां जो आ गई हैं उन खराबियों को जो है वो खत्म करना, क्योंकि जो नया वर्जन आता है वो पुराने वर्जन के अंदर जो बग्स क्रिएट हो गई होती हैं, वायरसेस आ चुके होते हैं या कुछ फॉल्ट्स रह गई होती हैं, करंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो अपडेट की जरूरत पड़ती है, तो उसका एक नया वर्जन लाया जाता है। ठीक है ना, जिस तरह सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा होता है, नया वर्जन लाया जाता है। सही है, जमाने के हालात अल्लाह ताला चेंज करते रहते हैं, इसी वजह से तो फिर नए नबी की जरूरत पड़ती है, उसी वजह से तो फिर नए दीन की, नई शरीयत की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन वर्जन 3 क्यों, वर्जन 2 क्यों नहीं, वर्जन 4 क्यों नहीं? जी माशाल्लाह। ठीक है, वर्जन 1 तो मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत थी। ठीक है ना, वो वर्जन 1 थी जुडेज्म की। फिर ईसा अलैहिस्सलाम जो आए वो एक मेजर शरीयत लेकर के आए जो कि इंजील की बुक से मशहूर है। ठीक है, तो वो वर्जन 2 बन गया, और नबी अलैहिस्सलाम जो लेकर के आए वो वर्जन 3 बन गया इसका। ठीक है ना, है असल में वही दीन है इस्लाम, वर्जन 1, वर्जन 2 और वर्जन 3। ठीक है, तो ये कहता है अब चलेगा इसको
Virtuous that we were going
Thank you, man. अच्छा
to be received as being so different. And he goes, okay, since you've given us such amazing surrender terms, my alarm is going on and I can't turn it off. And it's so embarrassing. It's telling me to put my kids to bed. I should have remembered to turn it off, but it didn't occur to me. Because you've given us such amazing surrender terms, and because I feel such kinship with your religion, you do me an honor. You come to my church and pray in your Muslim way next to me as I pray in my Christian way. Omar ibn al-Khattab goes, never. Sophronius goes, why? He goes, I'm the Caliph. First place I pray in Jerusalem is going to become a mosque. The Muslims will take it. They will create a place of worship for Muslims, and you will lose it. I don't want you to lose your church. Sophronius goes, oh, okay. What if we find an empty piece of Jerusalem and we just pray there? And Omar go, Ibn al-Khattab goes, yes, I accept. Empty piece, something that nobody owns. They go and they find an empty lot and they pray. Archbishop in his Christian way, the Caliph in his Muslim way, side by side. There's a mosque today, that spot, commemorating the first place that the first Muslim Caliph prayed in Jerusalem. He nailed it. He knew what was coming. He saved Church of the Holy Sepulchre for Christians. Because that's the church Sophronius wanted him to pray in.
तो ये कह रहा है कि उसने ना, जो सोफ्रेनियस था उनका, उसने कहा कि मुझे एक आइडिया आया है कि हम जो है ना चर्च में जा करके अब इबादत करते हैं, तुम अपने तरीके से इबादत करना और मैं अपने तरीके से इबादत करूंगा, ठीक है। तो अब ये जो है बंदा अमेरिकन प्रोफेसर, ये कह रहा है कि उमर रतानों ने ना, एक तो उस उमर रतानों ने ये कहा कि नहीं, मैं वहां पे इसलिए प्रे नहीं करूंगा क्योंकि मैं जहां भी प्रे करूंगा ना, तो मैं मुसलमानों का खलीफा हूं, तो मुसलमान जो है ना वो उस जगह को मस्जिद बना देंगे, ठीक है ना, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जो चर्च है ना वो खत्म हो जाए, वो मस्जिद बन जाए, ठीक है, तो इस वजह से ना मैं वहां पे प्रे नहीं करूंगा, ठीक है ना। दिस इज पार्टली ट्रू, ठीक है, क्यों, इसलिए कि ये खदशा बेशक था कि मुसलमान उसको कन्वर्ट करके जो है वो मस्जिद बना लेंगे, लेकिन क्या सिर्फ ये ही एक वजह थी कि उमर अतान जो है वहां पे नमाज नहीं पढ़ना चाहते थे, बल्कि शरीयत के अंदर हमारी ये है इस्लाम के जो जो गैर मुस्लिमों की इबादत गाह होती है ना, तो वहां पे जाकर के हम अपनी इबादत नहीं करें, ठीक है, उससे उनकी इबादत गाहों को जो है वो इज्जत मिलती है, हम उनकी इबादत गाहों को इज्जत नहीं दे सकते, प्रोटेक्शन जरूर देते हैं, ये मुसलमान मुमलिकत के अंदर ये मुसलमानों की जिम्मेदारी होती है कि जब नॉन मुस्लिम्स मुसलमानों के साथ पीस एग्रीमेंट कर लेते हैं और जिजिया देते हैं, टैक्स देते हैं, तो अब मुसलमान उनकी इबादत गाहों की हिफाजत करते हैं कि उसको कोई तोड़े नहीं, उसको कोई जलाए नहीं, उसको कोई खत्म नहीं करे, ठीक है ना, नई इबादत गाहें बनाने की इजाजत नहीं है आखिर इस्लाम के अंदर, कि हिंदू जो है ना वो किसी मुसलमान मुल्क के अंदर आकर के जो है वो अपना नया मंदिर बना रहे हैं, नया जो है वो चर्च बना रहे हैं, नई कोई चीज बना रहे हैं, लेकिन जो पहले से मौजूद थी उनकी हिफाजत जो है मुसलमान करते हैं, ठीक है। तो बहरहाल उमर अतान उन्होंने वहां पे नमाज नहीं पढ़ी, बल्कि कहा कि मुझे कोई एम्प्टी पीस ऑफ लैंड बताओ, ठीक है, तो वहां पर साइड बाय साइड इबादत करी या नहीं करी उससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो एक खुली जगह थी ना, तो वहां पर फिर उमर रतानों ने नमाज पढ़ी और मुसलमानों ने वहां पर फिर मस्जिद बना भी ली, ठीक है ना, मस्जिद उमर के गालबन नाम से वहां पर वो मस्जिद मौजूद है जहां उमर रतानों ने नमाज पढ़ी थी।
At that point, the caliph says, I want to see the Temple Mount. Sophronius goes, why? And the caliph goes, because it's holy. Holy to everybody. It's holy to Christians, it's holy to Jews, it's holy to Muslims. And Sophronius goes, nah, we haven't been treating it as holy to anybody.
उसके बाद ना उमर अतान ने उससे पूछा कि मुझे टेंपल माउंट दिखाओ, ठीक है, टेंपल माउंट को क्या कहते हैं उर्दू में या अरबी में, टेंपल माउंट उसको, और वो उन्होंने कहा कि अच्छा, उसने सोफ्रानिस ने कहा कि क्यों क्यों तुम जो है वो टेंपल माउंट देखना चाहते हो, तो उमर अतान ने कहा कि भाई वो जो है वो हमारे नजदीक बहुत मुकद्दस जगह है, इस वजह से मैं उसको देखना चाहता हूँ, मुकद्दस जगह की जो है वो ज्यारत करना चाहता हूँ, तो अब वो मुकद्दस जो है वो सिर्फ हमारे लिए कोई थोड़ी है, वो तो ईसाइयों के लिए भी है, वो तो यहूदियों के लिए भी मुकद्दस है, तो उस पर उसने कहा नहीं, हम उसको मुकद्दस मुकद्दस कोई नहीं मानते, ठीक है, हम उसको नहीं मुकद्दस मानते, ठीक है ना, तो तुम देखना चाहते हो चलो मैं उधर ले जाता हूँ, लेकिन हम तो उसको जो है ना वो तोड़ताड़ करके हम उसको कचरे का डंप बना चुके हैं, 500 साल से वहां पर जो है वो हम कचरा फेंकते हैं जाकर के, ठीक है, तो मैंने कहा क्या तुम लोग ये क्यों करते हो उसके साथ, नहीं, बिकॉज जूस को जो है ना वो तो समझते ही नहीं है इस काबिल, वो जूस की जगह थी, अच्छा ये टेम्पल माउंट, इसको हम हैकले सुलेमानी, ठीक है, हैकले सुलेमानी जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था, ठीक है, जिन्नों के जरिए से बनवाया था, ठीक है, अगरचे के उसको फिर बाद में बुख्त नुसर एक बादशाह था इराक से आया था, उसने जो है ना वो इस टेम्पल माउंट को हैकेले सुलेमानी को जमी बोस कर दिया था, बिल्कुल फ्लैट कर दिया था, लेकिन बाद में फिर जो यहूदियों ने तौबा करी, अल्लाह ताला ने फिर उनको बैतुल मुकद्दस अता फरमा दिया, तो फिर जो नए नबी आए ना बाद में जो नबी आए उनके यहूदियों के, तो उन्होंने फिर दोबारा से जो है उसको कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है ना, तो अब ये जो रोमन्स ने जब इसके ऊपर कब्जा किया ना, ठीक है, तो रोमन्स ने आकर के उसको फिर से जो है वो तोड़ ताड़ करके खत्म कर दिया था और जगह को जो है वो कचरे की जगह बना दी थी।
And Omar ibn al-Khattab goes, what do you mean? And so Sophronius says, so after we tore down the second temple of Solomon, when we conquered Palestine, turned the Temple Mount into a garbage dump,
punish the Jews. And the Caliph goes, "What do you mean?" And Sophronius goes, "Yeah, there's like 500 years of refuse on that thing. It's just a garbage dump." And he goes, "Show me." They walk up to the Temple Mount, and the Caliph can't believe what he's looking at. He falls on his knees and he begins clearing the garbage by his hands. His army sees their leader on his knees clearing garbage, and they run up and they start clearing the garbage themselves. They clear the garbage off the Temple Mount. Caliph goes, "Okay, I want to meet some of the Jews living in Jerusalem." Sophronius goes, "There are no Jews in Jerusalem." The Caliph goes, "What do you mean there's no Jews in Jerusalem? The city is holy to the Jews. How can there be no Jews?" And he says, "Well, us Christians, we pretty much murder them every chance we get. We really hate Jews. In fact, in the war we just did against the Persians, the Jews sided with the Persians. And so we murdered 20,000 Jews in Jerusalem and completely purged the city of its remaining Jewish population." Omar ibn al-Khattab goes, "No, this is wrong. You can't do this." So he turns to a convert to Islam, a Jewish convert to Islam. He says, "I need you to find me 80 Jewish families who are willing to volunteer to move to Jerusalem so we can reestablish a Jewish presence in the city." That's how the Muslims conquered Jerusalem.
तो बस यहाँ तक आपको सुनाना था। तो जब ये लोग टेंपल माउंट की उस गार्बेज डंप वाली जो शक्ल बनी हुई थी वहां पे जब ये लोग पहुंचे तो उमर अतान ने जब ये देखा ना तो इसके हिसाब से जो इसकी हिस्ट्री जिसने पढ़ी है इसके हिसाब से उमर अतान जो है वो अपने नीज के ऊपर गिर गए और उन्होंने ना उसको अपने हाथों से साफ करना शुरू कर दिया। जैसे कि यानी नाउज बिल्ला सुम्मा नाउज बिल्ला आप किसी मस्जिद को देखें कि उसके ऊपर लोगों ने जो है वो नॉन मुस्लिम ने कचरा जमा कर दिया है उसके अंदर, तो आप फौरन उसकी सफाई करना शुरू कर देंगे। आप ये तो नहीं कहेंगे ना, अच्छा मैं अभी 911 को कॉल करता हूँ, अभी मैं इनको कॉल करता हूँ, वो आएंगे और आकर के सफाई करेंगे। एक अच्छा मुसलमान, नेक ईमान वाला, वो फौरन से खुद सफाई करनी शुरू कर दे, अल्लाह का घर है ये, ठीक है। तो हमारा तो खुद से सफाई करनी शुरू कर दी, और जब उनकी आर्मी के लोगों ने देखा कि खलीफा जो है वो खुद अपने हाथों से वो कचरे को साफ करें, सारे के सारे आगे बढ़े और सबने जो अपने हाथों से कचरे को साफ करना शुरू कर दिया। यानी मुसलमान जो है वो इस ये टेम्पल माउंट को, मस्जिद अक्सा तो नहीं है ये, लेकिन वो जो जिसको हैकल मुसलमान ये लोग कहते हैं उसको इतनी ज्यादा अहमियत देते हैं, ठीक है ना भाई। हमारे नबी अलैहिस्सलाम सुलेमान अलैहिस्सलाम वो भी तो हमारे नबी थे ना, ठीक है। तो उन्होंने जो इसको बनाया था, अल्लाह ताला ने बनवाया था, डोम ऑफ द रॉक अलग जगह है, ठीक है। ये अब जो है ना कहते हैं ये, अब इसके आसार तो वहां पे नहीं है, लेकिन अब ये कहते हैं कि जो हमारी मस्जिद अक्सा है ना, ये मस्जिद अक्सा जो है ये टेंपल माउंट के ऊपर है, तो टेंपल माउंट जो है ना वो उसके नीचे अंडरग्राउंड है ये चीज, ठीक है। अब ये चाहते ही हैं जो जूज हैं इनके पास तो ये सारी चीजें नहीं है ना, जो उमर खान के पास अखलाकियात और सच्चा दीन था, अब ये चाहते ही है कि हमारे मस्जिद अक्सा को ये गिरा दें और नीचे से जो है ना वो टेंपल माउंट को फिर बुनियाद से जो है वो कंस्ट्रक्ट करें और ऊपर पूरी इसकी बिल्डिंग बना दें, ठीक है। कहते ये हैं कि अंडरग्राउंड इन्होंने ऑलरेडी सारी बिल्डिंग वगैरह जो है वो बनाई हुई है, बस इनको इंतजार इस बात का है कि जो भी सही वक्त आएगा, जो इनकी किताबों में इनको निशानी वशाने लिखी हुई है सही वक्त की, तो उसके मुताबिक ये जब वो वक्त आएगा तो उसको गिरा देंगे मस्जिद अक्सा को और ऊपर से जो है उनको रिकंस्ट्रक्ट कर देंगे।
मिल
नहीं वो मिला नहीं ना, उन्होंने कर चुके होते हैं अभी तक उनको नहीं मिला है। बहरहाल अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, हरमैन शरीफैन की, सबकी, तीनों हरम की हिफाजत फरमाए। तो उमर ताला ने फिर कहा कि भाई मैं किसी यहूदी से यहाँ पे मिलना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसने कहा यहाँ पे कोई यहूदी हो गई नहीं है, कहाँ गए सारे के सारे यहूदी, ये जगह तो यहूदियों के लिए मुकद्दस है, ये कैसे हो सकता है कि यहाँ कोई यहूदी फैमिली नहीं रहती। उन्होंने कहा कि असल में ना हम तो यहूदियों को जो है ना वो इंसान ही नहीं मानते, हम तो उसको उनको जिंदा ही नहीं रहने देना चाहते हैं, तो हमने जो है ना वो बहुत यहूदियों को मारते हैं, जब हमें मौका मिलता है हम यहूदियों को मार देते हैं, ठीक है ना। तो अभी पिछली जो हमारी जंग हुई थी ना फारिस वालों के साथ, इरानियंस के साथ, तो उसमें ना यहूदियों ने इरानियंस का साथ दिया था, तो जब हमने इरानियंस को हरा दिया तो फिर हमने 20,000 यहूदियों को ना उधर ही क्लिंच कर दिया, कत्ल कर दिया, ठीक है। इसके ऊपर बड़ी हिस्ट्री मौजूद है और इन लोगों की अपनी बुक्स के अंदर है कि ये हर मौके पे कभी 10,000 यहूदियों को मार देते थे, कभी 50,000 यहूदियों को मार देते थे, कभी जो है वो उससे भी ज्यादा यहूदियों को मार देते थे। और ये चलता रहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर, जो कि क्रिश्चियन था, पक्का कट्टर क्रिश्चियन था, उसने जो है वो मिलियंस ऑफ यहूदियों को जो है वो कत्ल कर दिया था, ठीक है ना। दैट वॉज द लास्ट जेनोसाइड जो कि सो फार यहूदियों का हुआ है, और वो किसने किया है? क्रिश्चियंस ने किया है, ठीक है। तो उमर रतान जो है वो इस तरीके से, हाँ, जिसको होलोकॉस्ट भी कहते हैं। तो ये बात कह करके बस आखिरी बात एक आपसे ये करनी थी कि ये हमने आपको सुनवाया क्यों था? इस वजह से खाली सुनवाया था कि भाई देखिए हमारी किताबों के अंदर तो ये सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन एक और ईमान को ताजा होने का मौका मिलता है ना कि जब हम अपने खुलफा के, अपने नबी अलैहिस्सलाम के अस्हाब की जो तारीफें हैं वो हम किसी गैर मुस्लिम के मुंह से भी सुने, ठीक है ना, तो ईमान को जो है वो मजीद तकवियत मिलती है। इस नीयत से सुनवाया था, लेकिन इसका मतलब हरगिज हरगिज ये नहीं था कि अब आप ये सोचना शुरू हो जाएं कि जी देखो ना अच्छी कितने अच्छे लोग हैं, हैं कितने अच्छे लोग हैं, आखिर को जो है वो हमारे बड़ों की जो है वो इतनी तारीफें कर रहे हैं, तो चलो हम भी इनके बड़ों की तारीफ करते हैं, चलो हम भी जो है ना वो हमारे दीन की अगर तारीफ कर रहे हैं तो हम भी उनके दीन की तारीफ करते हैं, ठीक है ना। ऐसा हरगिज नहीं है। पहली बात तो ये कि वो हमारे दीन की तारीफ कर नहीं रहे, ठीक है ना। वो कुछ चीजें जो कि उनके हिस्ट्री बुक्स के अंदर उन्होंने लिखी हुई देख ली है, अब वो कुछ चीजें फॉर अ सर्टन रीजन, वो किसी मकसद से वो हमारे कुछ लोगों की जो है ना वो तारीफें कर रहे हैं, और ना उनका मकसद भी जो है ना वो कोई इतना अच्छा मकसद होता नहीं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि वो हमारे बिलीफ सिस्टम की तारीफ नहीं कर रहे, ठीक है, वो हमारे दीन को कबूल तो नहीं कर रहे हैं ना। असल में तो वो यही कह रहे हैं ना कि आपके जो नबी थे आखिर में जो आए, नाउज बिल्ला सुम्मा नाउज बिल्ला, उन्होंने सच बात कही नहीं, ठीक है ना, उन्होंने सच बात कही नहीं कि मेरे पास जो ये किताब है ये अल्लाह की किताब है और मैं अल्लाह का रसूल हूं, ठीक है ना। असल में वो क्या कह रहे हैं, एक क्रिश्चियन असल में क्या कह रहा होता है कि सुम्मा नाउज बिल्ला, सुम्मा नाउज बिल्ला, तुम्हारे नबी जो थे नाउज बिल्ला वो झूठे थे, तुम्हारे नबी झूठे थे, ठीक है ना। क्योंकि अगर वो ये कहे कि तुम्हारे नबी सच्चे थे तो फिर तो उसको मुसलमान होना पड़ेगा ना, ठीक है ना। यही तो इस्लाम है कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यही तो इस्लाम है। तो भाई अगर आप हमारे नबी अलैहिस्सलाम की इतनी तारीफें कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे हिंदू भी तारीफें करते हैं, बहुत सारे ईसाई भी करते हैं, बहुत सारे बुद्ध भी करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, गांधी ने भी बड़ी तारीफें करी, लेकिन ऐसी तारीफों का हम क्या करें जबकि तुम जो है वो आखिर में ये कहते हो नऊज बिल्ला झूठ बोल रहे थे। तो हम तो झूठा होना तो कोई तारीफ नहीं होती है, ठीक है ना। तो अगर आपको इतना शौक है तारीफ करने का तो आप मुसलमान हो जाएं, हमें क्या फायदा होगा, आपका अपना फायदा हो जाएगा, आप जहन्नम की आग से बच जाएंगे, ठीक है। और जहां तक ईसाइयों का मामला है और ईसा अलैहिस्सलाम को जो उन्होंने अल्लाह ताला का बेटा मान लिया, तो अब हमारे साथ एक बहुत बड़ा मसला है, ठीक है ना, हमारे साथ इंडिया पाकिस्तान के खुसूसन मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ा मसला है। वो ये है कि हमें हिंदू तो बहुत गंदे लगते हैं, हमें हिंदू तो बहुत गंदे लगते हैं, लेकिन हमें ईसाई बड़े अच्छे लगते हैं, क्यों? इसलिए कि वो अंग्रेजी बोलते हैं है? गोरी चमड़ी भी है और वो अंग्रेजी भी फरफर बोलते हैं, और अंग्रेजी जो है वो अजमत की निशानी है। अंग्रेज जो है वो गंदा नहीं हो सकता, अंग्रेज तो अच्छा ही हो सकता है, गोरा ना भी हो ना फिर भी वो अच्छा ही लगता है क्योंकि अंग्रेजी बोलता है वो, ठीक है ना। तो चूंकि हम ब्रिटिश के गुलाम रहे हैं ना, तो ब्रिटिश ने अपनी गुलामी के अंदर हमारे जहन को ऐसा बना दिया है, अपना स्लेव बना दिया है कि हमें एवरीथिंग टू डू विद यूरोप इज नाइस। तो अब इस वजह से ना हमें ईसाइयत से कोई कराहियत नहीं आती, हमें हिंदुओं से बड़ी कराहियत आती, गंदे हैं ये, छी किस्म के लोग हैं ये करते हैं, ये गंदा करते हैं, वो गंदा करते हैं, गंदा करते हैं। ईसाई ये तो ये कौन सी गंदगी है, तो बोलते हैं साफ सुथरे है ना, अच्छे परफ्यूम भी लगाए हुए होते हैं, महक रहे होते हैं, अच्छे अच्छे खुशबुओं के साथ महक रहे होते हैं, है ना, और काम जो है वो वक्त पे करते हैं, वादा पूरा करते हैं, दफ्तर टाइम पर आते हैं, स्कूल टाइम पर आते हैं, और ये ठीक है, तो बड़े अच्छे लगना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से इस आयत को जो है ना वो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ये जितने ही आपको अच्छे लगें, लेकिन अल्लाह ताला इनके बारे में क्या फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं वकालू, ये लोग कहते हैं इत्तखज़ अर्रहमान वलदा, कि अर्रहमान ने बेटा बना लिया, ईसा अलैहि सलाम को बेटा बना लिया है ना। तो ये लोग कहते हैं कि अर्रहमान ने ईट बेटा बना लिया अपना, लकद जे तुम शई अन इद्दा, हकीकत यह है कि तुमने बहुत संगीन हरकत करी है, बहुत बड़ी हरकत करी है तुमने ये बात कह करके। तकादु समावात यतफत्तरन मिन्हु वतन्शक्कुल अर्दु वतखर्रुल जिबालु हद्दा, कि ये जो बात किया ना तुमने कि रहमान ने बेटा बना लिया है, वो भी किसको, अपने बंदे को बेटा बना लिया है, ये ऐसी है कि कुछ बईद नहीं कि इसकी वजह से आसमान फट पड़े, राइट, और जमीन फट जाए, शक हो जाए जमीन, और पहाड़ टूट करके गिर पड़े। इतनी बुरी बात तुमने कही है, इतनी बड़ी बात तुमने कही है रहमान के खिलाफ कि क्या अन दाउल रहमानी वलदा, कि लोगों ने, इन लोगों ने खुदाए रहमान के लिए औलाद होने का दावा किया है। ठीक है, तो ईसाइयों के लिए किसी किस्म का जो है ना वो नरम गोशा दिल में रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसने अगर कुछ अच्छी बातें हमारे बारे में कह दी है ना, आप यकीन करें इसकी भी रीजंस हैं, जो कि इस वक्त वक्त भी खत्म हो गया है और हमें मौका नहीं है कि इस वो बात हमें आपको हम आपको समझा सकें कि आजकल क्यों ये इतना बटरिंग कर रहे हैं मुसलमानों की, क्यों बटरिंग कर रहे हैं और खुल करके कर रहे हैं, यहूदियों को बुरा कर रहे हैं और मुसलमानों को अच्छा कह रहे हैं, इतने अच्छे नहीं हो गए हैं ये। ये असल में क्या चाहते हैं, ये असल में चाहते हैं कि मुसलमान जो है ना वो अपना ईमान खो दें, वो इनके बिलीव्स को जो है ना वो अच्छा कहना शुरू कर दें, जिससे कि वो काफिर हो जाएंगे, उसके बाद वो मुसलमान रहेंगे नहीं, और जब वो मुसलमान रहेंगे नहीं तो फिर जो दज्जाल साहब आएंगे तो उनके लिए पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करना बहुत आसान हो जाएगा। असल में ये बात रीजन और कोई रीजन नहीं है,
बंदा
ये बंदा ईसाई नहीं था, लेकिन ये अच्छा, ये बंदा जरूरी नहीं है कि इसको सब कुछ पता भी हो, ये जरूरी नहीं है, इसको बस इजाजत मिल गई है कि तुम कहो जो कहना है तुम्हें, जरूरी नहीं है कि इसको सारी चीजें पता हो। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, बस कराएंगे।
Recording stopped.
एक बोल बना वैसे स्टाइल है।